तो चलिए आज की इस डीप डाइव में एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करते हैं। जब किसी इंसान को कोई शारीरिक चोट लगती है ना, तो उसका इलाज खोजना काफी सीधा होता है।
हाँ बिल्कुल। मान लीजिए किसी की बांह टूट जाए तो डॉक्टर क्या करता है? बस एक एक्सरे मशीन का इस्तेमाल करता है।
एग्जैक्टली। उस काली फिल्म पर एक साफ सफेद लकीर दिख जाती है और डॉक्टर तुरंत कह सकता है कि देखिए हड्डियां से टूटी हैं और यहीं पर सारा दर्द है।
ये एक बहुत ही स्पष्ट और सुकून देने वाली प्रक्रिया है।
हाँ, क्योंकि जो चीज हमें दिखती है हम उसे आसानी से ठीक कर सकते हैं।
देखिए ये इंसानी फितरत है, हम हर प्रॉब्लम को ना एक स्पष्ट खांचे में फिट करना चाहते हैं।
बिल्कुल सही बात है।
जब दर्द का एक ठोस कारण होता है तो हमारे मस्तिष्क को ये तसल्ली मिलती है कि इसका एक तार्किक समाधान भी मौजूद है।
राइट।
लेकिन समस्या तब आती है जब दर्द शरीर का नहीं बल्कि मन या आत्मा का हो।
अदृश्य दर्द। हाँ, जब हम गहरे मनोवैज्ञानिक संघर्ष की बात करते हैं, अस्तित्व के संकट या फिर सामाजिक बहिष्कार और शर्मिंदगी,
तब दुनिया की कोई भी एक्सरे मशीन काम नहीं आती।
बिल्कुल नहीं आती। वो अदृश्य दर्द इंसान को अंदर ही अंदर खोखला करता है। और आज हम जिन दिलचस्प स्रोतों की गहराई में उतरने वाले हैं ना, वे हजारों साल पहले लिखे गए एक ऐसे ही अदृश्य दर्द के इलाज के बारे में है।
बहुत ही सटीक विषय है आज का।
तो आज के हमारे स्रोत डॉक्टर डेविड ए डी सिल्वा के एक बहुत ही बेहतरीन शोध पर आधारित हैं। इसमें उन्होंने एक बहुत ही प्राचीन ग्रंथ हिब्रूज के दूसरे अध्याय का विश्लेषण किया है।
हाँ, और ये विश्लेषण बहुत गहरा है।
जब मैंने इसे पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा कि ये बस एक पुराना धार्मिक पाठ होगा, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा है।
बिल्कुल, इसे केवल एक धार्मिक चश्मे से देखना ना, इसके असली महत्व को नजरअंदाज करना होगा। डॉक्टर डी सिल्वा का ये जो शोध है ये हमें बताता है कि ये प्राचीन ग्रंथ वास्तव में मानव मनोविज्ञान का हमारी सबसे गहरी असुरक्षाओं का एक बेहद परिष्कृत खाका है।
और एक सच्चे लीडर की परिभाषा को भी तो फिर से तय करता है ना।
एकदम सही। ये हमें सिखाता है कि कैसे एक लीडर अपने लोगों के दर्द को किसी दूर महल से नहीं
बल्कि उनके बीच की धूल और पसीने में उतरकर महसूस करता है।
एग्जैक्टली।
और यही बात आज के समय में इतनी अहम है। प्राचीन काल में जो आम लोग जिन चीजों से जूझते थे ना, जैसे शर्मिंदगी का बोझ या समाज में हाशिए पर ढकेल दिए जाने का एहसास,
पर सबसे बढ़कर मौत का खौफ।
हाँ, मौत का खौफ। ये सारी भावनाएं आज भी उतनी ही असली हैं। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए स्रोतों में एक बहुत ही दिलचस्प भाषाई उलझन का जिक्र किया गया है।
हाँ, वो अनुवाद वाला हिस्सा।
राइट। शुरुआत में भजन संहिता 8 का संदर्भ आता है। मैंने पढ़ा कि इसका मूल अर्थ कुछ और था, लेकिन हिब्रूज के लेखक ने इसे पूरी तरह से एक नया मोड़ दे दिया। ये क्या मामला था?
देखिए, इसे समझने के लिए ना हमें उस दौर की सोच को देखना होगा। मूल रूप से ये जो भजन संहिता 8 है, ये पूरी मानवता की अहमियत का एक बहुत सुंदर गीत था।
ओके, मतलब ये इंसानों के बारे में था।
हाँ, ये इस सवाल पर विचार करता था कि इस विशाल ब्रह्मांड में इंसान की क्या हैसियत है और फिर भी ईश्वर ने उसे इतना सम्मान क्यों दिया है।
एक तरह से पूरी मानव जाति की गरिमा का जश्न था।
बिल्कुल। लेकिन हिब्रूज के लेखक ने यहाँ एक बहुत ही चतुर एक साहित्यिक और दार्शनिक कदम उठाया।
वो क्या?
उन्होंने इस पूरी कविता को पूरी मानवता से हटाकर सीधे तौर पर एक व्यक्ति यानी यीशु की कहानी पर केंद्रित कर दिया।
और यहीं पर मैंने स्रोतों में ना आधुनिक अनुवादों की बड़ी गड़बड़ के बारे में पढ़ा, जिसने मुझे वाकई हैरान कर दिया।
हाँ, वो जेंडर न्यूट्रल अनुवाद वाली बात।
एग्जैक्टली। आज के दौर में जो नए लिंग तटस्थ अनुवाद आ रहे हैं, उनमें मूल हिब्रू के सन ऑफ मैन वाक्यांश को बदलकर मॉर्टल्स या नश्वर इंसान कर दिया गया है। ऐसा क्यों किया गया और इससे क्या नुकसान हो रहा है?
देखिए, अनुवादों का इरादा शायद पाठ को आज के पाठकों के लिए अधिक समावेशी बनाना था।
इंक्लूसिव बनाने के लिए।
हाँ, मॉर्टल शब्द का इस्तेमाल करके वे ये जताना चाहते थे कि ये गीत हर इंसान के लिए है। लेकिन समस्या ये है कि सन ऑफ मैन न प्राचीन यहूदी साहित्य में सिर्फ एक आम इंसान का पर्यायवाची नहीं था।
अच्छा, तो फिर क्या था?
ये एक बहुत ही विशिष्ट लगभग खगोलीय रुतबे वाले व्यक्ति की ओर भी इशारा करता था। और सबसे बड़ी बात, यीशु खुद के लिए इसी सन ऑफ मैन उपाधि का इस्तेमाल करते थे।
अरे वाह।
तो जब आप इसे मॉर्टल्स में बदल देते हैं तो वो गहरा ऐतिहासिक और जो कूटनीतिक तार था वो टूट जाता है,
जो हिब्रूज का लेखक बड़ी सावधानी से जोड़ रहा था।
बिल्कुल सही।
यानी लेखक जिस सटीकता से एक विशेष व्यक्ति की ओर इशारा कर रहा था, अनुवाद में वो धुरी ही गायब हो गई। और अनुवाद के इसी खेल में एक और बड़ा मोड़ आता है,
वो ग्रीक अनुवाद वाला ना।
हाँ, स्रोतों में ग्रीक अनुवाद का जिक्र है जिसे सेप्टुआजेंट कहा जाता है। मैंने पढ़ा कि हिब्रू से ग्रीक में जाते ही एक शब्द का पूरा अर्थ ही बदल गया। क्या आप इस बारीकी को थोड़ा समझा सकती हैं?
यह इतिहास की सबसे शानदार भाषाई दुर्घटनाओं में से एक है। मूल हिब्रू पाठ में लिखा था कि इंसान को स्वर्ग दूतों से रुतबे और स्थान में थोड़ा छोटा बनाया गया है।
मतलब एक पदानुक्रम की बात थी।
बिल्कुल,
कि भगवान, फिर स्वर्गदूत और फिर इंसान।
एकदम सही। लेकिन जब इस पाठ का ग्रीक भाषा में अनुवाद किया गया ना, तो अनुवादकों ने जिस ग्रीक शब्द का चयन किया उसके दो अर्थ थे।
अच्छा।
हाँ, पहला अर्थ तो वही था, रुतबे में थोड़ा छोटा, लेकिन उसका दूसरा अर्थ समय से जुड़ा था।
समय से? मतलब कैसे?
मतलब कुछ समय के लिए छोटा।
क्या बात है।
हाँ,
मतलब सिर्फ एक शब्द ने पूरी की पूरी दार्शनिक दिशा ही बदल दी।
ठीक कहा आपने। हिब्रूज के लेखक ने ग्रीक अनुवाद के इसी दूसरे अर्थ को कुछ समय के लिए छोटा होने को पकड़ लिया। उन्होंने इसका अर्थ ये निकाला कि यीशु का मानव रूप में इस धरती पर आना, उनका दुख और पीड़ा सहना, ये उनके रुतबे में हमेशा के लिए कोई गिरावट नहीं थी।
ये महज कुछ समय के लिए स्वर्गदूतों से नीचे आना था।
बिल्कुल, ये एक सोची समझी रणनीति थी जहाँ पीड़ा से गुजरना महिमा तक पहुँचने का एक अस्थाई लेकिन जरूरी रास्ता था।
इसे थोड़ा आधुनिक नजरिए से देखते हैं, क्या ये कुछ वैसा ही है? मान लीजिए एक मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी का सीईओ है।
अच्छा उदाहरण है।
वो एक वातानुकूलित कमरे में बांटता है, अपना सारा डेटा देखता है, लेकिन एक दिन वो अपनी कुर्सी छोड़ता है, अपना महंगा सूट उतारकर कंपनी की यूनिफॉर्म पहनता है
और फैक्ट्री के सबसे निचले स्तर पर जाकर काम करने लगता है।
Exactly. वो ऐसा इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उसकी नौकरी चली गई है, बल्कि वो कुछ समय के लिए जमीनी स्तर पर आ रहा है।
हाँ, ताकि वो हकीकत समझ सके।
राइट. वो उस चिलचिलाती गर्मी, मशीनों के शोर और उन कर्मचारियों की थकान को खुद महसूस करना चाहता है।
ये एक बहुत ही सटीक और गहरा उदाहरण है।
देखिए, वो सीईओ फैक्ट्री में इसलिए नहीं उतरा क्योंकि उसमें कोई योग्यता कम हो गई थी। वो इसलिए उतरा क्योंकि 50वीं मंजिल के बोर्डरूम में बैठकर ना, वो कभी भी ये नहीं समझ सकता कि 12 घंटे की शिफ्ट के बाद किसी कर्मचारी के पैरों में कैसा दर्द होता है।
बिल्कुल सही बात है।
वो उस पीड़ा को सिर्फ बौद्धिक रूप से जान सकता है, अनुभव के स्तर पर नहीं।
और जब तक वो उस अनुभव को नहीं जिएगा, वो उनके लिए ऐसी नीतियां नहीं बना पाएगा जो वास्तव में उनके काम आए। यहीं से ना इस ग्रंथ का एक और बड़ा विचार जन्म लेता है।
कौन सा विचार?
सॉलिडेरिटी, यानी सच्ची एकजुटता।
लेकिन इस फैक्ट्री वाले उदाहरण में सीईओ का लक्ष्य क्या है? स्रोतों के मुताबिक इस पूरी प्रक्रिया, ये जो पीड़ा है और ये जो नीचे आने का काम है, इसका अंतिम लक्ष्य उस लीडर को परफेक्ट बनाना था।
हाँ, परफेक्ट बनाना।
अब ये शब्द मुझे ना थोड़ा उलझाता है। क्योंकि आज की दुनिया में परफेक्ट का मतलब है जिसमें कोई दाग ना हो, जो कभी कोई गलती ना करे। अगर वो लीडर पहले से ही श्रेष्ठ था तो उसे परफेक्ट होने की क्या जरूरत थी?
ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जो हमारी आधुनिक भाषाओं के कारण पैदा हुई है। प्राचीन यूनानी और हिब्रू सोच में ना, परफेक्ट होने का मतलब नैतिक रूप से बेदाग होना या खामियां मिटाना नहीं था।
तो फिर क्या था?
ये टीलियोलॉजिकल परफेक्शन था। इसका मतलब है किसी उद्देश्य की पूर्णता तक पहुंचना, अपने अंतिम गंतव्य तक जाना।
अच्छा, मतलब कोई डेस्टिनेशन है, वहां तक पहुंचना।
हाँ, इसे ऐसे समझिए, जब हम कहते हैं कि एक बच्चा परफेक्ट हो गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने रोना बंद कर दिया है। इसका प्राचीन मतलब होता कि वो बच्चा अब बड़ा होके एक परिपक्व इंसान बन गया है, उसने अपनी विकास प्रक्रिया पूरी कर ली है।
ओके. या जैसे प्राचीन रहस्यमय परंपराओं में जब कोई नया व्यक्ति पुरोहित बनता था तो उसे कई मुश्किल परीक्षाओं से गुजरना पड़ता था।
बिल्कुल, और जब वो सारी परीक्षाएं पार कर लेता था ना, तब उसे परफेक्ट या दीक्षित माना जाता था।
अच्छा, तो ये खामियां दूर करना नहीं बल्कि एक प्रक्रिया से गुजरकर निखरना है। अगर हम इसे एक वीडियो गेम के चश्मे से देखें तो क्या ये लेवल अप करने जैसा है?
लेवल अप? हाँ, समझाइए जरा।
मतलब जब आप गेम खेलते हैं तो आपका किरदार कई राक्षसों से लड़ता है, उसे चोटें लगती हैं, उसका हेल्थ बार कम होता है, लेकिन वो सारे संघर्ष, वो सारे घाव दरअसल एक्सपीरियंस पॉइंट्स होते हैं।
बिल्कुल सही।
और उन्हीं एक्सपीरियंस पॉइंट्स के बलबूते वो किरदार अपने अंतिम स्तर या अपने परफेक्शन तक पहुंचता है।
बहुत खूब। उस लीडर के लिए पीड़ा, अपमान और मृत्यु का अनुभव वही एक्सपीरियंस पॉइंट्स थे। और हिब्रूज का लेखक ना इस बात पर बहुत जोर देता है कि ये कोई मामूली बात नहीं थी।
कैसे?
अगर हम उस समय के समाज को देखें जो पहली सदी का ग्रीको रोमन समाज था, तो वो पूरी तरह से सम्मान और शर्म की नींव पर खड़ा था।
ऑनर एंड शेम कल्चर।
हाँ, उस समाज में आपकी हैसियत ही सब कुछ थी। एक अमीर और ऊंचे रुतबे वाला रोमन नागरिक कभी भी किसी गुलाम या निचले तबके के इंसान के साथ एक ही मेज पर खाना नहीं खा सकता था।
बाप रे।
उसे अपना रुतबा बनाए रखना होता था। अगर वो ऐसा करता तो उसे समाज में भारी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता।
लेकिन मैंने स्रोतों में पढ़ा कि उस समय के जो स्टोइक दार्शनिक थे जैसे सेनेका और अराटस, वे तो समानता की बात करते थे ना?
हाँ, करते थे।
उनका तो मानना था कि पूरी मानवता एक ही कॉस्मिक धूल से बनी है, इसलिए हम सब समान हैं।
हाँ, स्टोइक दर्शन ये मानता था कि क्योंकि हम सबका उद्गम एक ही है, इसलिए हम सब भाई भाई हैं।
हाँ।
ये एक तरह की ना समतल समानता थी, एकदम फ्लैट
इक्वालिटी।
बिल्कुल। लेकिन हिब्रूज जिस एकजुटता की बात कर रहा है, वो इस स्टोइक विचार से कहीं ज्यादा क्रांतिकारी थी।
अच्छा, उसमें ऐसा क्या अलग था?
मानता पहले से मौजूद नहीं है। यहाँ एक अत्यंत उच्च दर्जे का लीडर जो पूरी सृष्टि का वारिस है, वो जानबूझकर समाज के सबसे निचले और तिरस्कृत लोगों के बीच आता है। और सबसे बड़ी बात, स्रोतों में यशाया 8 और भजन संहिता 22 का हवाला देकर बताया गया है कि वो लीडर उन हाशिए पर खड़े लोगों को भाई बहन कहने में जरा भी शर्म महसूस नहीं करता।
उस ऑनर एंड शेम वाले समाज में एक राजा का भिखारियों को अपना परिवार कहना तो एक सामाजिक भूचाल के समान रहा होगा।
एकदम सही पकड़ा आपने, ये बहुत बड़ी बात थी।
ये वाकई चौंकाने वाला है। तो एक तरफ हमारे पास वो लीडर है जो अपने लोगों के साथ खड़ा होने के लिए स्वेच्छा से दर सहता है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि वो लीडर उन्हें किस चीज से बचाना चाहता है? उनका असली दुश्मन कौन है?
ये सबसे अहम सवाल है।
और यहाँ आकर ये स्रोत ना इतिहास से निकलकर सीधे तौर पर बहुत ही गहरे मनोविज्ञान में गोता लगाते हैं। वो सबसे बड़ा दुश्मन है मौत का डर।
सही कहा आपने। इस पूरे विश्लेषण का जो सबसे गहरा और प्रभावशाली हिस्सा है ना, वो यही है। मौत का डर इंसान की सबसे बुनियादी कमजोरी है। हिब्रूज के लेखक ने यहाँ दार्शनिक विचारों और यहूदी ईसाई मान्यताओं का एक बहुत ही शानदार मिश्रण पेश किया है।
जैसे सुकरात वाला उदाहरण।
हाँ, प्राचीन दर्शन में सुकरात का उदाहरण बहुत मशहूर था। सुकरात ने बिना किसी डर के जहर का प्याला पी लिया था, क्योंकि
उनका मानना था कि मौत से डरना अज्ञानता है।
बिल्कुल, एक सच्चा ज्ञानी मौत को एक नई शुरुआत मानता है। दूसरी तरफ यहूदी और ईसाई दृष्टिकोण में ना, मौत को एक बाहरी बुराई या यूं कहें कि शैतान के एक हथियार के रूप में देखा जाता था।
ओके।
हिब्रूज इन दोनों को मिलाता है। वो कहता है कि लीडर मौत का सामना करके उस खौफ को हराता है ताकि उसके अनुयायी आजाद हो सके।
लेकिन डॉक्टर डी सिल्वा ने इस मौत के डर का जो मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा अहा मोमेंट था। मतलब दिमाग खुल गया।
हाँ, वो बहुत ही बारीक बात कहते हैं।
वे बताते हैं कि इंसान के हर स्वार्थी काम के पीछे दरअसल मौत का डर ही छिपा होता है।
अन्याय, बेईमानी या लालच की जड़ भी यही है। आज के समय में भी हम देखते हैं ना, लोग बेतहाशा दौलत इकट्ठा करते हैं, आलीशान घर बनाते हैं, हर चीज को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं।
ये बहुत ही सूक्ष्म बिंदु है। अगर आप सोचे कि हम जरूरत से ज्यादा धन क्यों जमा करते हैं, हम हर चीज पर अपना कब्जा क्यों चाहते हैं?
क्यों?
मनोवैज्ञानिक स्तर पर ये सब हमारे अवचेतन में बैठे खत्म हो जाने के डर से पैदा होता है।
सबकॉन्शियस डर।
हाँ, हमें लगता है कि हमारा बड़ा बैंक बैलेंस, हमारी ऊंची दीवारें और हमारी सत्ता हमें एक सुरक्षित घेरे में रखेगी। ये सब हमारी नश्वरता के खिलाफ एक एक झूठी ढाल बनाने की कोशिश है।
राइट।
जब कोई सत्ताधारी किसी कमजोर पर अन्याय करता है तो वो भी एक तरह से अपनी ताकत का प्रदर्शन करके खुद को अजय महसूस करवाना चाहता है।
मतलब मौत का डर ही वो जंजीर है जो हमें इन निरर्थक दौड़ों में बांधे रखती है और हमें अन्यायी व्यवस्थाओं के सामने झुकने पर मजबूर करती है।
एक मिनट, यहाँ मुझे थोड़ी उलझन हो रही है और मैं यहाँ ना इस विचार को थोड़ा चुनौती देना चाहूंगा।
हाँ, बिल्कुल पूछिए।
देखिए, विज्ञान और जीव विज्ञान तो हमें सिखाते हैं कि मौत का डर तो एक प्राकृतिक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, ये तो हमें जिंदा रखता है।
सर्वाइवल इंस्टिंक्ट।
हाँ, अगर इंसान आग से या जंगली जानवरों से नहीं डरेगा तो वो खत्म हो जाएगा। अगर हम इस डर को पूरी तरह निकाल दें तो क्या धन कमाने, सुरक्षित भविष्य बनाने या सफलता के पीछे भागने की हमारी ये पूरी जीवन शैली ही बेमानी नहीं हो जाएगी?
ये बहुत ही जायज सवाल है आपका।
क्या यही डर ही वो इंजन नहीं है जो दुनिया को चला रहा है?
देखिए, एक जैविक स्तर पर हाँ, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट हमें खतरे से बचाता है, आग से दूर रहना समझदारी है। लेकिन डॉक्टर डी सिल्वा का विश्लेषण और ये प्राचीन ग्रंथ ना, जिस डर की बात कर रहा है वो जैविक नहीं बल्कि अस्तित्वगत डर है,
एग्जिस्टेंशियल डर।
बिल्कुल, समस्या तब आती है जब नहीं सर्वाइवल इंस्टिंक्ट हमारा मालिक बन जाता है। जब आप अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ इसलिए जी रहे हैं ताकि आप अपना रुतबा या अपनी संपत्ति न खो दें, तब आप आजाद नहीं हैं, आप गुलाम हैं।
ओहो, क्या बात कही है।
अगर दुनिया को चलाने वाला इंजन सिर्फ असुरक्षा और खौफ है, तो वैसी सफलता असल में एक सोने का पिंजरा है। इस ग्रंथ का संदेश ये नहीं है कि आप मूर्खों की तरह अपनी जान जोखिम में डालें।
तो फिर क्या है
संदेश? ये है कि जब आप इस बात से आजाद हो जाते हैं कि हाय मेरा क्या होगा, तब आपके अंदर सही और गलत के लिए खड़े होने का एक नैतिक साहस पैदा होता है।
वाओ।
आप अन्याय का विरोध कर सकते हैं क्योंकि आपको अब अपना रुतबा छिन जाने का डर नहीं सताता।
ये बहुत बहुत गहरी बात है। जब इंसान इस डर से आजाद हो जाता है तो उसे उस आज़ादी को बनाए रखने के लिए और उस नई आध्यात्मिक ऊंचाई से जुड़े रहने के लिए एक सहारे की जरूरत होती है।
हाँ, एक मध्यस्थ की।
और यहीं से इन स्रोतों का चौथा और बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा उभर के आता है, पॉन्टिफिक्स, यानी सबसे महान पुल बनाने वाला।
पॉन्टिफिक माइनर एक बहुत ही दिलचस्प लैटिन शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ ही होता है पुल बनाने वाला या ब्रिज बिल्डर।
ब्रिज बिल्डर,
हाँ। प्राचीन रोम और उसके आसपास की दुनिया में पुरोहित की भूमिका केवल मंदिरों में धूप बत्ती जलाने या मंत्र पढ़ने तक सीमित नहीं थी। वे समाज के ब्रोकर या मध्यस्थ हुआ करते थे।
ब्रोकर,
हाँ। जैसे उस समय के समाज में एक पेट्रन या संरक्षक होता था जो किसी आम आदमी की पहुंच राजा या किसी बड़े अधिकारी तक करवाता था, वैसे ही पुरोहित को इंसान और ईश्वर के बीच का ब्रोकर माना जाता था,
जो इंसानों की प्रार्थनाओं को ऊपर ले जाते थे और ईश्वर की कृपा को नीचे लाते थे।
एग्जैक्टली।
लेकिन स्रोतों में इसके पीछे का जो ऐतिहासिक संदर्भ दिया गया है ना, वो बताता है कि क्यों आम लोगों को एक नए पुल बनाने वाले की सख्त जरूरत थी। मैंने पढ़ा कि दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में जब राजा एंटियोकस चतुर्थ का राज था, तब सब कुछ भ्रष्ट हो चुका था।
बहुत बुरी तरह से। राजा एंटियोकस चतुर्थ के समय में यरूशलेम के मंदिर में पुरोहितों का पद इतना भ्रष्ट हो गया था कि लोग उसे सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेच रहे थे।
मतलब धर्म के रक्षक लालची राजनेताओं की तरह बर्ताव कर रहे थे।
बिल्कुल। अब जरा उस समय की एक आम इंसान की मनोदशा सोचिए। उसका समाज वैसे ही मुश्किलों से भरा था और जिस धार्मिक व्यवस्था से उसे उम्मीद थी वो भी बिक चुकी थी।
कितनी भयानक निराशा रही होगी।
इसी घोर निराशा के बीच डेड सी स्क्रोल्स और कुमरान जैसी जगहों पर रहने वाले समुदायों ने यरूशलेम के मंदिर का बहिष्कार कर दिया। वे रेगिस्तान में चले गए और एक सच्चे बेदाग प्रीस्टली मसीहा की उम्मीद करने लगे।
एक ऐसा मध्यस्थ जो भ्रष्ट ना हो, जिसे खरीदा ना जा सके और जो सच में ईश्वर से जुड़ा हो।
एकदम सही।
और यहीं पर हिब्रूस का लेखक उस पुरानी उम्मीद को एक बिल्कुल नया और हैरान करने वाला रूप देता है।
लेखक कहता है कि ये नया पुल बनाने वाला कोई ऐसा पुरोहित नहीं है जो किसी जमीन पर बने मंदिर में खड़ा हो, वो स्वर्ग में है। और सबसे बड़ी बात, ऐतिहासिक पुरोहित जानवरों की कुर्बानी देते थे, लेकिन इस मध्यस्थ ने खुद की कुर्बानी दी है।
यही इसका सबसे बड़ा मोड़ है।
लेकिन मेरे लिए जो बात ना सबसे ज्यादा प्रभाव छोड़ती है वो ये है कि ये मध्यस्थ कोई दूर बैठा कठोर न्यायाधीश नहीं है, क्योंकि उसने खुद इंसान के रूप में पीड़ा, दर्द और प्रलोभनों को झेला है, इसलिए वो इंसानी कमजोरियों के प्रति पूरी सहानुभूति रखता है।
ये सहानुभूति वाला जो पहलू है ना, यही इसे इतना शक्तिशाली बनाता है।
राइट।
प्राचीन लोग देवी देवताओं को ऐसा मानते थे जिन्हें इंसानों के दर्द से कोई खास फर्क नहीं पड़ता।
राइट। लेकिन यहाँ एक ऐसा मध्यस्थ है जो हर उस दर्द को जानता है जिससे एक आम इंसान गुजरता है। जब कोई इंसान टूट रहा होता है या प्रलोभन में हार मान रहा होता है, तो ये पुल बनाने वाला उसे सजा देने के लिए तैयार नहीं खड़ा होता,
बल्कि उसे समझने और संभालने के लिए मौजूद होता है।
बिल्कुल।
इसे समझने के लिए मैं एक रोजमर्रा का उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए आपने जीवन की सबसे कठिन प्रवेश परीक्षा दी है,
एंट्रेंस एग्जाम।
हाँ। आप रात रात भर जागे हैं, आपने फेल होने का डर और वो भारी मानसिक दबाव झेला है। सालों बाद आप उसी परीक्षा के एडमिशन बोर्ड में बैठ जाते हैं।
अच्छा, फिर?
अब जब कोई घबराया हुआ छात्र आपके सामने इंटरव्यू देने आता है, तो आप सिर्फ नियमों की किताब देखकर उसे सवाल नहीं पूछेंगे।
नहीं, बिल्कुल नहीं।
आप उसकी कांपती हुई आवाज में उस दर्द और दबाव को पहचान लेंगे, क्योंकि आप खुद उस आग से गुजर चुके हैं।
हाँ।
आपका नजरिया सजा देने वाला नहीं बल्कि समझने वाला होगा।
क्या बात है, बहुत ही सुंदर उदाहरण है। और यही कारण है कि ये प्राचीन ग्रंथ ना उस समय के हाशिए पर खड़े और सताए गए लोगों के लिए उम्मीद की एक बहुत बड़ी किरण बन गया। वे जानते थे कि सत्ता के गलियारों में भले ही उनकी कोई सुनवाई ना हो, लेकिन ब्रह्मांड के सबसे ऊंचे स्तर पर एक ऐसा मध्यस्थ बैठा है जो उनके दर्द से अनजान नहीं है।
तो आज हमने जिन विचारों को खंगाला है वे वाकई किसी एक्सरे मशीन से परे की चीजें हैं।
बिल्कुल।
हमने देखा कि कैसे अनुवाद की एक छोटी सी ऐतिहासिक बारीकी, यानी सन ऑफ मैन से लेकर कुछ समय के लिए छोटा होना तक, एक विशाल दार्शनिक विचार को जन्म देती है।
और हमने ये भी समझा कि परफेक्ट होने का असली मतलब सिर्फ गलतियां मिटाना नहीं बल्कि अपने दर्द से गुजर कर अपने अंतिम उद्देश्य तक पहुँचना है।
राइट। हमने इस खौफनाक मनोवैज्ञानिक सच का भी सामना किया कि कैसे मौत का डर हमें धन दौलत और सत्ता का गुलाम बना देता है। और अंत में हमने ये जाना कि सच्चा मध्यस्थ या पुल बनाने वाला वही होता है जो खुद उस पीड़ा की आग से होकर गुजरा हो, ताकि वो सच्ची सहानुभूति रख सके।
ये सब आपस में बहुत ही तार्किक और गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। ये केवल इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये जीवन जीने का एक ऐसा ढांचा है जो हमें बताता है कि डर से कैसे आजाद होना है
और हमारे व्यक्तिगत संघर्षों का असल में क्या अर्थ हो सकता है।
एकदम सही।
और अब इस चर्चा को समाप्त करते हुए मैं हमारे सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़कर जाना चाहता हूँ।
जरूर।
हमने देखा कि इस प्राचीन ग्रंथ के अनुसार पीड़ा और संघर्ष ही वो भट्टी हैं जिसमें तप कर हम सच्ची सहानुभूति सीखते हैं और परफेक्ट यानी अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचते हैं।
राइट।
तो जरा सोचिए, आज की हमारी आधुनिक दुनिया जो हर कीमत पर सिर्फ दर्द से बचना चाहती है, जो हर तकलीफ का एक तुरंत समाधान या एक पेनकिलर खोज रही है
और सिर्फ सुख सुविधाओं के पीछे भाग रही है।
हाँ, तो क्या वो अनजाने में हमें अधूरा, सहानुभूतिहीन और अंदर से बहुत कमजोर तो नहीं बना रही है? इस गहरे विचार के साथ हम आज की अपनी ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।
जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
शुक्रिया।